रीयूनियन पार्टी में हर कोई इशिका के पति के बारे में पूछ रहा था। तभी अभिमन्यु के शब्दों ने उन सबको चौंका दिया था। अभिमन्यु ने ये कहा कि इशिका का पति यहाँ इस पार्टी में मौजूद है। आयशा और नक्श की निगाहें वहाँ मौजूद हर एक लड़के की तरफ देखने लगीं। तो क्या इशिका ने किसी क्लासमेट से शादी की थी? नक्श उस लड़के को ढूंढना चाहता था जिसने इशिका की ज़िंदगी में उसकी जगह इतनी आसानी से ले ली थी। वो कुछ पूछ पाता तभी प्रोफेसर मिलर ने कहा, चलो अब बता भी तो दो, तुमने किससे शादी की है? इतना सस्पेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। इशिका उसकी बात का कोई जवाब दे पाती उससे पहले अभिमन्यु ने कहा, मैं इसका पति हूँ और हम दोनों की शादी हुई है। अभिमन्यु की बात सुनकर हर कोई हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा, तो वहीं अब आयशा के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। अभिमन्यु ने टेबल के नीचे से इशिका का हाथ पकड़ रखा था। उसने वैसे ही अपना हाथ ऊपर किया और कहा, अब तो आपको यकीन हो गया होगा। अब तक अभिमन्यु निक को कुछ कह नहीं पाया था। अपनी शादी के अनाउंसमेंट करने के बाद उसने पूरे एटीट्यूड के साथ निक से कहा, मुझे खुशी है मिस्टर मार्टिन कि मेरी पत्नी आपकी कोई हेल्प कर सकी। अगर फ्यूचर में आपको किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत हो तो आप डायरेक्ट मुझसे कहिएगा। ये अभिमन्यु की तरफ से सीधा सीधा इशारा था कि निक आगे से इशिका को मैसेज ना करे। इशिका बहुत मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर पा रही थी। उसने एक दिन में अभिमन्यु के चेहरे पर इतने सारे एक्सप्रेशंस देखे थे। वो इशिका को लेकर पजेसिव हो रहा था, उसे निक से जलन भी हो रही थी। उसके बाद अभिमन्यु ने पृथ्वी की तरफ इशारा किया तो पृथ्वी ने आगे आकर कहा, मिस्टर राजवंश और मिस सिंघानिया की तरफ से कुछ खास गिफ्ट है, वो थोड़ी देर में ऊपर पहुंच जाएंगे और आज के डिनर का पे भी मिस्टर राजवंशी करने वाले हैं। आप बेफिक्र होकर अपनी पसंद की कोई भी डिश यहाँ शेफ को ऑर्डर करके बनवा सकते हैं। जब नक्श और आयशा ने डिनर का अरेंजमेंट किया था तब उनका डिसाइड किया हुआ मेन्यू था। हालांकि मेन्यू काफ़ी शानदार था लेकिन अभिमन्यु ने उस पार्टी में चार चांद लगा दिए थे। उसने होटल के पूरे कुकिंग स्टाफ को बुक कर लिया था ताकि वो उन लोगों के लिए खास खाना बना सके। उन लोगों ने अभिमन्यु को थैंक्स कहा। अभिमन्यु ही उनके साथ रुकना चाहता था पर उसके पास एक कॉल आ गया। कॉल पर बात करने के बाद अभिमन्यु के चेहरे के भाव बदल गए थे। बात करने के बाद अभिमन्यु ने इशिका की तरफ माफ़ी भरी निगाहों से कहा, मुझे जाना होगा। कोई बात नहीं, इशिका ने बेपरवाही से जवाब दिया। अभिमन्यु ने कुछ भी कहने से पहले आसपास के लोगों की तरफ देखा जिनकी निगाहें उनकी तरफ टिकी गई थीं। अभिमन्यु ने काफ़ी नरम लहजे में कहा, मैं दूसरी गाड़ी में जा रहा हूँ और मेरी गाड़ी यहाँ तुम्हारे लिए खड़ी है, आराम से घर आ जाना। अभिमन्यु अपनी जगह से खड़ा हुआ, फिर उसकी नज़र निक पर पड़ी जो अभी भी इशिका के पास बैठा हुआ था। उसने गहरी सांस लेकर कहा, मिस्टर मार्टिन, मुझे लगता है कि आपको भी यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि यहाँ सब स्टूडेंट्स हैं और हमारा इस पार्टी में कोई काम नहीं है। हमारी वजह से ये लोग अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। निक वहाँ रुकना चाहता था लेकिन अभिमन्यु के कहने पर उसे वहाँ से उठना पड़ा। जाने से पहले उसने मुस्कुराकर इशिका से कहा, मिस सिंघानिया, मैं आपसे बाद में बात करूँगा। निक की बात सुनकर अभिमन्यु के चेहरे के भाव सख्त हो गए थे। उन सब के जाते ही वो कमरा पहले की तरह आरामदायक हो गया था क्योंकि अभिमन्यु और निक की प्रेजेंस में सब लोग ज़्यादा बोल नहीं पा रहे थे। उनके जाते ही सब फिर से आपस में बातें करने लगे। सब अपने आप को काफ़ी खुशकिस्मत समझ रहे थे जो एक साथ दो बड़े बिजनेस टाइकून के साथ उन्हें डिनर करने का मौका मिला था। अभिमन्यु तो चला गया था लेकिन जाते जाते उसने एक बड़ा बम फोड़ दिया था। उसने सबके सामने इशिका को अपनी पत्नी कह दिया था और ये आयशा से कहा बर्दाश्त होने वाला था। आयशा ने तीखी निगाहों से इशिका की तरफ देखा और कहा, मानना पड़ेगा इशिका, तुम कितनी बेशर्म हो। काफ़ी अच्छे से तुमने चाचू को अपने जाल में फंसाया है कि उन्होंने सबके सामने तुम्हारी रिस्पेक्ट रखने के लिए तुम्हें अपनी पत्नी तक कह दिया। इशिका ने बेपरवाही से सिर हिलाया और कहा, तुम भी रुकने वाली नहीं हो ना, मिस्टर राजवंश ने खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट किया है कि हम दोनों की शादी हो चुकी है, फिर तुम सबको भड़काने में क्यों लगी हुई हो? मैं यहाँ किसी को नहीं भड़का रही, बस सच बता रही हूँ। ये अनजान है इसलिए तुम्हारी बातों में आ सकते हैं, पर मैं सच जानती हूँ। तुम और चाचू हस्बैंड वाइफ कैसे हो सकते हो? चाचू की शादी 2 साल पहले हुई थी और तुमने अभी कुछ महीनों पहले ही शादी की है, आयशा ने तेज आवाज में कहा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें यकीन है या नहीं, मैं और मिस्टर राजवंश लीगली हस्बैंड वाइफ हैं। बाकी तुम्हें यकीन करना है करो, नहीं करना तो हमेशा की तरह जाकर चार लोगों को इकट्ठा करके शोर मचाओ, शायद वो तुम्हारी बात पर यकीन कर ले, इशिका ने सख्ती से जवाब दिया। आयशा ने गहरी सांस ली और कहा, मैं चार लोगों को इकट्ठा करके शोर नहीं मचाऊंगी बल्कि उन्हें सबूत दिखाऊंगी। तुम्हें पता भी है कि 2 दिन बाद दादी का बर्थडे है, वो बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन होने वाला है और मैंने गेस्ट लिस्ट देखी थी, वहाँ अभिमन्यु चाचू की वाइफ का नाम था। इंडिया तो वो पहले ही आ चुकी है लेकिन ऑफिशियली सबके सामने पार्टी वाले दिन आएगी। मेरे पास उनके नंबर हैं और मैं कॉल लगाकर तुम्हें साबित कर सकती हूँ। आयशा ने गेस्ट लिस्ट निकालकर अभिमन्यु की पत्नी का नंबर दिखाया तो इशिका के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी क्योंकि वो नंबर किसी और का नहीं, उसी का था। इशिका के पास काफ़ी सारे नंबर थे, वो उसका रेगुलर कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था जिस वजह से आयशा पहचान नहीं पाई थी। वो नंबर ज़्यादातर बंद ही रहता था और अभी भी कुछ ऐसा ही हुआ।
आयशा ने जब कॉल लगाया तो एक कंप्यूटराइज्ड वॉइस ने उसे मैसेज छोड़ने को कहा। ठीक है, उन्होंने अब कॉल रिसीव नहीं किया तो क्या हुआ, दादी के बर्थडे पार्टी के दिन वो जरूर आएगी और तब तुम्हें सब पता चल जाएगा, आयशा ने चैलेंजिंग वॉइस में कहा। ठीक है, देखते हैं किसे क्या पता चलता है, इशिका ने अभी भी बेपरवाही से कहा। इशिका की बेपरवाही देखकर आयशा ने हंसते हुए कहा, तुम अभी उन दोनों की लव स्टोरी के बारे में जानती नहीं हो, आंटी की तबीयत थोड़ी खराब रहती है लेकिन चाचू ने फिर भी उनका साथ नहीं छोड़ा और सबके खिलाफ जाकर उनसे शादी की। जब से कुछ टाइम से वो यहाँ पर वापस आई हैं, वो अक्सर उनसे मिलने जाते हैं, तुम्हें पता हो तो अभी थोड़ी देर पहले उनके पास कॉल आया था, देखा ना, उनके बुलाने पर वो सब कुछ छोड़कर एक ही बार में चले गए। इस बार आयशा के शब्दों ने इशिका को थोड़ा चिंता में डाल दिया था, क्योंकि अभिमन्यु पहले भी कई बार उसे छोड़कर जा चुका था, यहाँ तक कि वो हॉस्पिटल में बीमार पड़ी थी और उसका इंतजार कर रही थी, उस रात भी अभिमन्यु नहीं आया। इशिका का दिल जोर से धड़कने लगा था, एक पल के लिए उसे डर लगा कि क्या सच में अभिमन्यु की जिंदगी में कोई और लड़की है जिससे वो प्यार करता हो। इशिका के चेहरे पर परेशानी देखकर आयशा ने इमोशनल होकर कहा, देखो मैं तुम्हारी बहन हूँ तो तुम्हारे साथ रूड नहीं होना चाहती, लेकिन मैं नहीं चाहती कि जो मेरी मॉम के साथ हुआ वो अभिमन्यु चाचू और आंटी के साथ भी हो, कोई और औरत उनकी जिंदगी खराब करे, ये मैं कभी नहीं चाहती, और तुम तो मेरी बहन हो, बस इस नाते मैं तुम्हें समझा रही हूँ। इशिका ने जवाब में कुछ नहीं कहा तो आयशा को चुप होना पड़ा। जल्द ही डिनर हो जाने के बाद सब जाने लगे, आखिर में प्रोफेसर मिलर और इशिका ही बच गए थे। प्रोफेसर ने इशिका से सख्त अंदाज में पूछा, इशिका क्या सच में तुम मिस्टर राजवंश के साथ शादीशुदा हो, मामला कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। ये सच है सर, और आपको पता है मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, इशिका ने जवाब दिया तो प्रोफेसर ने सिर हिला दिया। उन्हें बस इशिका की परवाह थी और वो नहीं चाहते थे कि इशिका किसी भी अमीर आदमी के बहकावे में आए।
एक एक करके सब वहां से जा चुके थे। इशिका जब गाड़ी में बैठी तो तब उसके पास दिशांक का कॉल आया। उसने कॉल पर कहा, रियूनियन पार्टी में जो भी हुआ मैंने उसके बारे में सुना, उस एलिस को मैंने सबक सिखाने के लिए उसकी कंपनी में कॉल किया था तो पता चला कि उसे पहले ही वहां से निकाल दिया गया है। पता चला है कि जिसने भी उसे काम से निकलवाया है उसने ये श्योर किया है कि उस लड़की को पूरे गोवा और मुंबई में कहीं भी काम ना मिले। कोई आइडिया है तुम्हें कि ये किसने किया होगा, इशिका ने पूछा। हालांकि उसे बिल्कुल भी अफसोस नहीं हो रहा था कि एलिस के साथ ये क्यों किया गया। एलिस ने पहले भी उसके साथ बहुत बुरा किया था और वो बार बार उसे इग्नोर नहीं करने वाली थी। ये काम दो ही आदमियों का हो सकता है, निक मार्टिन या अभिमन्यु राजवंश। निक मार्टिन आपसे अभी मिला है तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी वो कुछ करवा पाएगा, तो नो डाउट ये मिस्टर राजवंश का काम है, दिशांक ने जवाब दिया। पता नहीं, और क्या फ़र्क पड़ता है, अगर वो नहीं करते तो हम कर देते, इशिका ने कहा और फिर कॉल कट कर दिया। दिशांक से बात करने के बाद इशिका ने देखा उसके पास निक ने कुछ मैसेज आए हुए थे जो काफ़ी अजीब थे। इशिका ने इरिटेट होकर उसे जवाब में लिखा, देखो मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ और ना ही जानने में इंटरेस्ट रखती हूँ, तो प्लीज़ मुझसे दूर रहो, तुम्हारी बातें सुनकर ऐसे लग रहा है कि तुम्हें एक साइकैट्रिस्ट की ज़रूरत है। ठीक से लैंग्वेज नहीं आने की वजह से निक अपनी बात समझा नहीं पा रहा था, लेकिन जब उसने इशिका के जवाब को पढ़ा तो उसने मायूसी से कहा, मिस सिंघानिया काफ़ी रूड है, मैंने उनसे एक छोटी सी हेल्प ही तो मांगी थी। उसका मैनेजर मिस्टर हिल उसके साथ ही था, पूरी बात तो वो भी नहीं जानता था, लेकिन उसने निक को समझाते हुए कहा, मिस सिंघानिया आपको ठीक से जानती नहीं है और यहाँ इंडिया में अननोन लोगों से लोग कम ही बातचीत करना पसंद करते हैं, एक बार आप दोनों के बीच में जान पहचान बढ़ जाएगी तो शायद वो आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेंगी। निक ने उसकी बात पर सिर हिला दिया, फिर उसने इशिका के दिए हुए छाते को देखकर धीरे से कहा, इस अम्ब्रेला के साथ मेरा गुड लक जुड़ा हुआ है, मैंने उससे एक अम्ब्रेला ही तो मांगा था, उसमें इतना रूड होने की क्या ज़रूरत थी। निक ने फिर मिस्टर हिल की तरफ देखकर कहा, कुछ भी करके मुझे उस बर्थडे पार्टी का इनविटेशन दिलाओ, मुझे उसमें जाना है। हो जाएगा, मैनेजर ने जवाब दिया। वहीं दूसरी तरफ इशिका राजवंश विला पहुंच चुकी थी। दो दिन बाद वसुधा का बर्थडे था और सब जानते थे कि शायद ही वसुधा अपना अगला जन्मदिन उनके साथ मना पाए। डॉक्टर ने उसे थोड़ा ही टाइम दिया था तो वो इस सेलिब्रेशन को जितना हो सके उतना ग्रैंड बनाना चाहते थे। उर्वशी और आयशा इवेंट मैनेजमेंट टीम के साथ बिजी थीं, तो साथ ही अलग अलग ट्रक आ रहे थे जिसमें ज़रूरत का सामान आ रहा था। इन सब के बीच इशिका वसुधा के पास पहुंची। वसुधा वहीं पर खड़ी इन तैयारियों को देखकर मुंह बना रही थी। इशिका को देखते ही वसुधा ने कहा, बहू इन्हें कहो कि ये दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ये सच में मुझसे प्यार करते हैं तो मुझे वो दें जो मैं चाहती हूँ, मेरे बजाय मेरे अभिमन्यु का इतना ध्यान रखते तो शायद मैं ज़्यादा खुश होती। इशिका ने हल्का हंसते हुए कहा, दादी हर किसी का प्यार जताने का तरीका अलग होता है, ये जो करना चाहते हैं इन्हें करने दीजिए ना। वसुधा ने सिर हिलाया और फिर अचानक इशिका का हाथ पकड़कर कहा, बहू तुम जानती हो कि मुझे अपने जन्मदिन के तोहफे के तौर पर क्या चाहिए। इशिका ने धीरे से पूछा, बताइए दादी आपको क्या चाहिए, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं जरूर दूंगी। फिर अचानक इशिका को कुछ एहसास हुआ तो वो जल्दी से बोली,
बस प्लीज़ ये मत कहिएगा कि आपको दो दिनों में आपका परपोता चाहिए, क्योंकि दो दिनों में ये किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं है। बोलते हुए इशिका के चेहरे पर हल्की स्माइल थी। वसुधा के चेहरे पर भी हंसी के भाव थे। उन्होंने कहा, हाँ जानती हूँ, और मुझे इतनी जल्दी चाहिए भी नहीं। मैं बस चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे बच्चे के साथ रहो, चाहे मैं इस दुनिया में रहूँ या ना रहूँ, पर तुम अभिमन्यु का साथ कभी ना छोड़ो। वसुधा की बात सुनकर इशिका के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। वसुधा अभिमन्यु के बारे में इतना क्यों सोच रही थी, वो इसका कारण भी जानती थी। इतने दिनों से इशिका उनके साथ थी तो एक बात समझ में आ गई थी कि पूरी राजवंश फैमिली में वसुधा के अलावा कोई नहीं था जो अभिमन्यु से प्यार करता हो। वसुधा के दिल में यही डर था कि अगर वो चली गई तो अभिमन्यु अकेला रह जाएगा, और उनकी तरह अभिमन्यु के बारे में सोचकर इशिका को अभिमन्यु पर दया आने लगी। इशिका ने अब वसुधा के चेहरे की तरफ देखा तो उनकी आंखें नम हो रही थीं। वो भी जानती थीं कि अब उनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा था, वरना उनका बस चलता तो वो अपनी जिंदगी के कुछ और साल अभिमन्यु के साथ बिताती। इशिका ने नम आंखों से जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मैं वादा करती हूँ दादी, मैं उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। वसुधा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और कहा, मैं खुश हूँ कि तुम उसके साथ रहना चाहती हो। क्या तुम जानती हो कि इस पार्टी में अभिमन्यु तुम्हें सबके सामने इंट्रोड्यूस करने वाला है? तुम दोनों की शादी अब पब्लिक हो जाएगी। देखना, उसके बाद कोई तुमसे ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारा और उस लड़के का रिश्ता क्या है। इशिका ये सुनकर हैरान रह गई। अब उसे ये समझ आ गया था कि आयशा ने ये क्यों कहा था कि इस पार्टी में अभिमन्यु की पत्नी आने वाली है। तो अभिमन्यु पहले से ही सब प्लान करके बैठा था। शायद अब दो दिन की देरी थी जब अभिमन्यु और इशिका का रिश्ता सबके सामने ऑफिशियल होने वाला था। इशिका वसुधा के पास से जाने लगी। तभी वसुधा ने कहा, पार्टी की रात बहुत खास होने वाली है, लेकिन याद रखना, कुछ लोग तुम्हारे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करेंगे। मुझे भरोसा है कि तुम उन्हें जीतने नहीं दोगी। इशिका को समझ में नहीं आया कि दादी का इशारा किसकी तरफ था। क्या सच में अभिमन्यु की जिंदगी में कोई और लड़की थी जिसे इशिका अब तक अनजान थी?